पृष्ठ संख्या 458, अध्याय 31। अध्याय शीर्षक है उत्तर आधुनिक धर्म या पोस्ट मॉडर्न रिलीजन। अब शीर्षक है पृष्ठभूमि। धर्म दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो देखेंगे कि मानव का आदिकाल से ही धर्म से संबंध रहा है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का इतिहास धर्म का इतिहास है, या यह भी कहा जाता है कि धर्म का इतिहास मानव विकास के संपूर्ण इतिहास को चित्रित करता है। धर्म का आदिकालीन रूप आदिम धर्म के रूप में, फिर जातीय धर्म तथा अंत में सार्वभौमिक रूप में प्रकट होता है। आधुनिक युग में धर्म का अनेक रूपों में अध्ययन किया जाने लगा। इसमें निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा, व्यक्तिगत आदर्शवादी विचारधारा, अनुभववादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा, फिर सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत धर्म की व्याख्याएं की गईं। आधुनिक युग में जहां एक ओर धर्मों का तुलनात्मक, वैज्ञानिक, समन्वयात्मक तथा उदारवादी दृष्टि से अध्ययन किया जाता रहा, वहीं दूसरी ओर धर्म के स्थान पर मानववाद या ह्यूमनिज्म को प्रतिष्ठित किया जाने लगा और इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षतावाद की भी आवाज़ उठाई जाने लगी। और अब तो यदि आश्चर्य में न पड़े तो यह भी सुनने के लिए तैयार होना होगा कि केवल धर्महीन समाज ही वास्तविक मानव समाज होगा। इस विवादपूर्ण समस्या में प्रवेश करने के पहले यहाँ आधुनिकता के आगे उत्तर आधुनिकता में धर्म का क्या स्वरूप तथा कार्य है, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि संक्षेप में कहें तो उत्तर आधुनिक समय में मनुष्य को स्वयं अपने नियंता होने का विश्वास दिलाया। संचार माध्यमों के वर्चस्व और तकनीकी श्रेष्ठता ने उसमें अहंकार भर दिया। पश्चिमी बौद्धिकता, तर्क और उपभोक्तावाद ने कला, साहित्य, धर्म और दर्शन को निरर्थक मान लेने का भ्रम दिया। उसने ईश्वर की अवधारणा से ही इनकार कर दिया। धर्म की प्रासंगिकता का प्रश्न उठाते हुए यह कहा जाने लगा कि आज शिक्षा व्यक्तिगत व पारिवारिक संबंधों का नियमन, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्धारण, कानून, राज्य व्यवस्था, न्याय, चिकित्सा आदि के वैकल्पिक संस्थान व नियामक एजेंसियां ज़्यादा उपयोगी, प्रभावशाली और सक्रिय हैं, तो भौतिक, पराभौतिक तथा प्रकृति व सृष्टि के रहस्यों से जुड़े सवालों आदि के ज़्यादा व्यवस्थित, तार्किक और विश्वसनीय उत्तर भी विज्ञान व दर्शन के कई गुना विकसित अनुशासनों के माध्यम से उपलब्ध हैं। इस सदी के अंत तक जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेम सेल जैसी खोजें आदमी को जरा और रोग से ही मुक्त नहीं करने जा रही हैं, बल्कि जिंदगी को हजार साल की परिधि में पहुंचा देंगी, इसकी पूरी संभावना है। ज्योतिर्विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की प्रगति सृष्टि की उत्पत्ति और अंत की गुत्थियों को भी सुलझाने के कगार पर हैं। ऐसे में आदि अनंत के वे दार्शनिक सवाल जो धर्म केंद्रित दर्शन का आधार थे, किस हद तक अप्रासंगिक हो जाएंगे, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ संख्या 459। इन कथनों से ही उत्तर आधुनिकता में धर्म की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ खड़ा होता है। कुछ उत्तर आधुनिक चिंतकों ने तो धर्म के पारंपरिक रूप को अस्वीकार करते हुए एक नए अर्थ में धर्म को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जायमंट बाउमन एक ऐसे ही उपभोक्तावादी विचारक हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिक धर्म के विषय में अपना विचार रिलीजन मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। हम उत्तर आधुनिक धर्म के विषय में बाउमन के लेख के विशेष संदर्भ में विचार प्रस्तुत करेंगे और अंत में उसकी एक समीक्षात्मक व्याख्या भी देने का प्रयास करेंगे। अब शीर्षक है भूमिका। लेख के प्रारंभ में बाउमन धर्म तथा धर्म की परिभाषा के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि आधुनिक धर्म तथा उत्तर आधुनिक धर्म मूल रूप से धर्म की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। एक ओर तो आधुनिक धर्म तर्क द्वारा धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करता है, दूसरी ओर उत्तर आधुनिक धर्म की अवधारणा है कि धार्मिक अनुभवों को परिभाषित करना तर्क संगत नहीं है। उत्तर आधुनिक धर्म का ऐसा मानना है कि सौंदर्य अथवा अतींद्रिय अनुभवों को अव्यक्त करना उन अनुभवों की हिंसा करने के सदृश है। यद्यपि उत्तर आधुनिक धर्म के आगमन से धर्म की परिभाषा करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती, किंतु उत्तर आधुनिक मस्तिष्क आधुनिक धर्म की तर्क प्रक्रिया का न तो बहिष्कार करता है और न ही इसे अंगीकार करता है। धर्म की परिभाषा करते समय बहुधा शब्दों के चयन में हेर फेर की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है, जो वैज्ञानिक अथवा सामाजिक मनस को ध्यान में रखते हुए की जाती है। धार्मिक अनुभव पवित्र अतींद्रिय सम्मोहक होते हैं, अतः उन्हें तर्क सारणी में बांधना संभव नहीं है। सारांश में उत्तर आधुनिक धर्म के विषय में लेखक का विचार है कि उत्तर आधुनिक धर्म के अंतर्गत वह सहिष्णुता है जहाँ धर्म को बिना परिभाषित किए हुए उसकी अव्यक्ति स्वीकार करता है। वह यह स्वीकार करता है कि अनुभूति शब्दों के माध्यम से अव्यक्त नहीं हो सकती और मौन रहकर ही उस अनुभूति का रसास्वादन किया जा सकता है। लेखक यह भी कहता है कि उत्तर आधुनिक धर्म यद्यपि धर्म की परिभाषा नहीं करता, फिर भी धर्म की परिभाषा करने की प्रक्रिया रुक नहीं सकती। बहुधा धर्म की परिभाषा करते समय अज्ञात की अव्यक्ति करनी पड़ती है, किंतु इसमें मात्र शब्दों का हेर फेर ही होता है। एक प्रकार से उत्तर आधुनिक धर्म धर्म को अपरिभाष्य मानता है। अब शीर्षक है पहला, धर्म की परिभाषा संभव नहीं, यदि करते भी हैं तो वह नष्ट हो जाती है। डिफाइन एंड पेरिस। इस संबंध में यह कहा जाता है कि जो लोग परिभाषा करने के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें चिंता होती है कि हम धर्म संबंधी विषयों पर कोई तार्किक भाषा प्रस्तुत करें, किंतु वे धर्म संबंधी विषयों पर कोई तार्किक भाषा देने में असमर्थ होते हैं। उत्तर आधुनिक धर्म की भी यह कठिनाई है कि वह धर्म की परिभाषा कैसे करे, क्योंकि धर्म को परिभाषित करना एक चुनौती है। पृष्ठ संख्या 460। लौकिक जगत की वस्तुओं की परिभाषा तथा पारलौकिक जगत की परिभाषाओं में अंतर है। लेखक के अनुसार दो प्रकार की परिभाषाएं हमें दुविधा में डालती हैं। एक तो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सत्ता के विषयों पर आधारित भाषा और दूसरी वह परिभाषा जो सामाजिक सांस्कृतिक सोच के आधार पर की गई परिभाषा। इसमें लौकिक मूल्यों के आधार पर परिभाषा की जाती है। इस प्रकार पहली परिभाषा पारलौकिक परिभाषा हुई और दूसरी परिभाषा लौकिक रूप की परिभाषा हुई। उत्तर आधुनिक धर्म की उत्सुकता धर्म को परिभाषित करने में नहीं है। उसकी मान्यता है कि हम अब उस मोड़ पर हैं जहां इसकी आवश्यकता नहीं है कि हमें अपने अनुभूति को सदैव शब्दों के माध्यम से अव्यक्त करना पड़े। अतींद्रिय ट्रांसेंडेंटल अथवा अंतिम अल्टीमेट को परिभाषित करना कठिन है। निष्कर्ष यह है कि धर्म की परिभाषा नहीं की जा सकती और यदि परिभाषा करते भी हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वह परिभाषा नष्ट हो जाती है। डिफाइन एंड पेरिश। अब अगला शीर्षक है दूसरा, ईश्वर अथवा आत्मनिर्भरता की कमी, गॉड आर इनसफिशियंसी ऑफ सेल्फ सफिशियंसी। उत्तर आधुनिक चिंतक के ईश्वर और धर्म के प्रति क्या विचार हैं उसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है। धर्म वास्तव में मानवीय अपूर्णताओं के प्रति जागरूकता है। यह वास्तव में मनुष्य की कमजोरी या आत्मनिर्भरता की कमी है, अर्थात मनुष्य अपनी असमर्थता और कमजोरी को ईश्वर की शरण में जाकर दूर करता है और अपने को सबल और समर्थ महसूस करता है। इसका पता धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाओं को देखकर चलता है। धार्मिक अनुष्ठान यह संदेश देते हैं कि ससीम या मनुष्य असीम या ईश्वर की उपासना करता है, जिसमें ससीम की असीम से दूरी सदैव बनी रहती है। इस संबंध में लेजिक कुलाकोवस्की अपनी पुस्तक इफ देयर इज नो गॉड 1882 लंदन फोंटाना में कहते हैं कि धर्म, ईश्वर, भाग्य, स्वर्ग और नरक के विषय में कथनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह धर्म वास्तव में मानवीय अपूर्णताओं के प्रति जागरूकता है। रिलीजन इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट गॉड, प्रोविडेंस, हेवन एंड हेल, रेदर रीजन इज इंडीड द अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन इनसफिशियंसी। कुलाकोवस्की का तात्पर्य यह है कि मनुष्य असहाय है। धर्म मनुष्य की अपूर्णताओं तथा असहाय की स्थिति का बोध है। फिर यदि ईश्वर नहीं है तो हमें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने होंगे और हम वह मार्ग ढूंढने में असमर्थ हैं, और यदि ईश्वर है तो वह हमें घटनाओं के बीच दिखाई देता है, जिससे हमें दैवी शक्तियों का आभास होता है। मानव मात्र की असमर्थता यह है कि वह अपने समस्त विवेक एवं बुद्धि के बावजूद बहुत से ऐसे कार्य करने अथवा सोचने में असमर्थ हैं जो उसे उपलब्ध ज्ञान के आधार पर कराना संभव प्रतीत होता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन में मनुष्य को ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं कारणों की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने को परिपूर्ण पाता है। हम ऐसा मानने लगे हैं कि गिरजाघर, मंदिर अथवा मस्जिद मानव के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निर्मित किए गए हैं, जहां जीवन का लक्ष्य अथवा अनेक भय आधारित प्रश्नों का उत्तर उसे साधारणतया नहीं मिलते, किंतु दैनिक जीवन में अनेकों कार्य करने पड़ते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना, चारा काटना, टैक्स देना, भोजन पकाना, छप्पर डालना, लेख लिखना, पत्र लिखना, अर्जी देना, नव आगंतुकों से मिलना, टीवी ठीक कराना, टिकट खरीदना आदि सम्मिलित है, जिनके कारण अनंत की खोज के लिए या ईश्वर की खोज के लिए समय नहीं मिलता। और फिर दिन भर के कार्यों के बाद सोने का समय आ जाता है और पुनः उसी प्रकार से अगला दिन भी अनेकानेक कार्यों और व्यस्तताओं में जीवन व्यतीत होता जाता है। पृष्ठ संख्या 461। आश्चर्य यह होता है कि चर्च, मंदिर आदि भी अन्य सेवा संगठनों की भांति अपने कार्य संचालनों के लिए उपभोक्ताओं की तलाश करते हैं और अपनी सेवा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि उनके कार्य की उपेक्षा न हो सके। यदि व्यक्ति को चर्च में जाकर क्षमा याचना करनी पड़ती है अथवा अपने परिष्कार के लिए उनकी मान्यताओं के अनुरूप अनुष्ठान करने होते हैं, तो व्यक्ति को उपभोक्तावादी समाज की भांति यह अनुभव होता है कि उसे अपने मूल्य के अनुरूप सेवा प्राप्त हो गई है और वह मृत्योपरांत दूसरे संसार के योग्य बना दिया गया है। और तब वह महसूस करता है कि वह उन भेड़ों की पंक्ति में सम्मिलित कर लिया गया है जहां वह चरवाहा या ईसा मसीह उसे मुक्त करा देगा। या दैट द शेफर्ड रोल टू इंश्योर द सालवेशन ऑफ हिज फ्लॉक मे बी एक्नॉलेज्ड, रेस्पेक्टेड एंड इंडोर्ड विथ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, जो कि फोकॉल्ट द्वारा 1988 में दिया गया है। लोग अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए उत्सुक होते हैं, जहां मृत्यु के बाद उन्हें पुरस्कार अथवा सजा मिलेगी और आने वाले जीवन के लिए अपने को तैयार करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में धर्म को बाहर से लाने का प्रयास किया जाता है। वह धर्म स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में प्रविष्ट नहीं होता है। धर्म तभी स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है जब पारलौकिक जगत की अभिप्सा हमारे लौकिक जीवन की आवश्यकताओं से गुरुतर हो सके। अनंत जीवन की अभिप्सा अर्थात धर्म की अभिप्सा स्वर्ग और नर्क की कल्पना के आधार पर की जाती है। इसे धर्म नहीं कह सकते, अर्थात स्वर्ग की कामना और नर्क का भय, यह ऐसे विषय नहीं हैं जिन्हें धर्म की संज्ञा दी जाए। यद्यपि दार्शनिकों और धार्मिक उपदेशकर्ताओं ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि यही धर्म है, हमारी अपूर्णता हमें धर्म के प्रति जागरूक करती है और गिरजाघर में हमारी चिंताओं का निवारण करने के बजाय हमारे जीवन के समस्त आयामों को घेर लिया, जहां मनुष्य की अपूर्णता का सदैव बोध होता रहे। सारांश यह है कि मनुष्य की आत्मनिर्भरता की कमी या अपूर्णता के कारण परमात्मा या ईश्वर या धर्म की स्थापना की गई। अब अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा, आधुनिकता अथवा ईश्वर विहीनता, मॉडर्निटी और डूइंग विदाउट गॉड। जायमंड बाउमन ने अपने लेख में आधुनिकता की विशेषता को यह कहकर बताया है कि आधुनिकता में ईश्वर के बिना अर्थात ईश्वर को बिना स्वीकारे संसार में कार्य किया जा सकता है। वह इस संबंध में कहते हैं कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से धर्म की आवश्यकता नहीं सिद्ध की जा सकी है। ईश्वर के समर्थन में दार्शनिकों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे मात्र इस संभावना को बल देते हैं कि कहीं न कहीं धर्म अथवा ईश्वर मौजूद है। ऐसी अवधारणा है कि मनुष्य के जीवन के अनेकों आयामों में न तो धर्म की आवश्यकता है और न ही भूतकाल में थी। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य को स्वयं ही स्वनिर्मित वस्तुओं का दायित्व ग्रहण करना है। पृष्ठ संख्या 462। इस प्रकार अवधारणा में एक नैराश्य भाव प्रतीत होगा अथवा आशावाद की किरण दिखाई देगी। दैनिक जीवन का संगठन दार्शनिक हर्ष अथवा अवसाद से मुक्त है और उसमें ऐसी बातों का स्थान नहीं है जो पारलौकिक है। आधुनिक जीवन दर्शन लौकिक समस्याओं से संबंध रखता है। उसमें मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का कोई स्थान नहीं है। आधुनिक मनुष्य मात्र उन समस्याओं को सुलझाना चाहता है जो वह स्वयं हल कर सकता है अथवा जिसमें स्वयं कुछ कर पाने की संभावना है। मार्क्स ने इसी आधार पर प्रतिपादित किया था कि किसी भी ऐतिहासिक काल में मनुष्य ऐसे कार्य करने का बीड़ा नहीं उठाता था जो वह स्वयं करने में असमर्थ था। यह अवधारणा पूर्ण रूप से सत्य है अथवा नहीं यह कहना कठिन है, किंतु आधुनिक मनुष्य के ऊपर या पूर्णतया लागू होती है। बाउमन ने मानववाद के विचारक जान केरोल को उद्धृत करते हुए बताया है कि केरोल ने अपने शोध में आधुनिक जीवन के सांस्कृतिक परिणामों पर प्रकाश डाला है जिसे वह मानववाद की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि आधुनिक क्रांति का लक्ष्य पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना है जहां स्वतंत्रता और सुख व्याप्त हो तथा जहां किसी अतींद्रिय सत्ता अथवा प्रकृति के परे की शक्तियों की कोई आवश्यकता न हो, जहां मनुष्य को संपूर्ण सत्ता का केंद्र माना जाए। यह अवधारणा आर्कमिडीज के उस बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है जहां पूरी सृष्टि चक्कर लगाती है। पीको डेला मिरांडोला सन 1486 ने सूत्र दिया था कि हम जो चाहें वह हो सकते हैं। अतः मानवतावाद के समर्थकों ने यह अवधारणा पैदा करने का प्रयास किया कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है। यदि उसकी इच्छा प्रबल हो तो वह स्वयं को निर्मित कर सकता है, वह साहसी हो सकता है, न्यायपूर्ण हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है। केरोल के मानवतावादी दृष्टिकोण के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना होगा। मानवतावाद ने जिस मनुष्य की परिकल्पना की उसमें सभी कुछ मनुष्य की इच्छा के अनुसार संभव नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर मात्र उन वस्तुओं के प्रति मालकियत स्थापित कर सकता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। केरोल की अवधारणा में ऐसी धार्मिकता का स्थान नहीं जहाँ सार्वभौमिक और सार्वकालिक जीवन के प्रति कोई दृष्टिकोण हो। मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व का इससे कोई स्थान नहीं है। मानव की आत्मनिर्भरता के विचार ने संस्थागत धर्म को कमजोर बना दिया, क्योंकि वह वैकल्पिक व्याख्या देने में असमर्थ रहा। पृष्ठ संख्या 463। मानवतावाद ने धर्म को उसी प्रकार की प्रक्रिया बना दिया जैसे नृत्य अथवा कला व्यक्तिगत होती है, तथा धर्म खाली समय में बैठकर किए जाने वाले कार्य के अनुरूप एक अनावश्यक वस्तु बनकर रह गया। धर्म या अस्तित्व अथवा मृत्यु संबंधी विचार खाली समय को बिताने के लिए एक विषय वस्तु बनकर रह गया। चर्च तथा अन्य संप्रदाय को इस बात की आवश्यकता हुई कि मृत्यु अथवा अस्तित्व से संबंधित रहस्यों के अतिरिक्त मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को अपनी व्यवस्था में स्थान दे सके। अब अगला शीर्षक है बिंदु चौथा, मृत्यु और न्याय दिवस सिद्धांत का विरोध या एंटी एस्केटियोलॉजिकल रिवोल्यूशन। उत्तर आधुनिक धर्म की स्थापना के लिए बाउमन ने चर्च द्वारा स्थापित मृत्यु तथा न्याय दिवस के सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आधुनिक कला ने पारंपरिक कला को ध्वस्त कर दिया, उसी प्रकार चर्च द्वारा स्थापित मृत्यु एवं मृत्यु के परे की मुक्ति की अवधारणा को आधुनिक धर्म ने ठुकरा दिया। जीन डेलामऊ ने अपनी पुस्तक सीन एंड फियर के विषयों पर विस्तृत अध्ययन किया एवं यह पाया कि मृत्योपरांत जीवन के प्रति आकर्षण तथा मोक्ष की आवश्यकता ने आधुनिक जीवन की शैली में अपना स्थान खो दिया है। भिक्षु, संत, दार्शनिक प्रवक्ता तथा इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों ने जिन मानकों का निर्माण किया था, जो पाप और पुण्य पर आधारित थे और सतत जीवन या इटर्नल लाइफ की संभावना पर बल देते थे, वह सब आधुनिक जीवन शैली में समाप्त हो चुका है। मोक्ष की अवधारणा कुछ गिने चुने लोगों की सुख संपदा बनकर रह गई है, जो साधारण जीवन शैली से बचना चाहते हैं तथा त्याग और भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। साधारण व्यक्ति तो अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करना चाहता है तथा सामान्य रूप से समाज के अनुकूल चलना चाहता है। मुक्ति के पीछे जीवन की आत्म आहुति, शरीर सुख का त्याग आदि अवधारणाएं पैगंबरों ने प्रतिपादित की तथा संसार के धन, सुख, ऐश्वर्य, आदर, सौंदर्य तथा लौकिक वासनाओं का त्याग करना सिखाया। ईश्वर के संदेश वाहकों का संभवतः यह उद्देश्य नहीं था कि व्यक्ति जीवन के प्रति विरक्त एवं उदासीन हो जाए, किंतु इसका प्रभाव विपरीत पड़ा। मनुष्य ने सोचा जीवन क्षण भंगुर है और शरीर मृत्यु उन्मुख है, अतः जीवन रहते हम पूर्ण उपभोग कर लें जब तक कि हम स्वस्थ हैं। अधिकांश लोगों के लिए इन संतों पैगंबरों द्वारा प्रतिपादित कष्टपूर्ण जीवन का निर्वहन करना अत्यंत कठिन था, अतः भोगवादी दृष्टिकोण का अपनाना सरल प्रतीत हुआ। आधुनिक धर्म ने ईसाइयत के लंबे शासन को ध्वस्त किया, मरणोत्तर जीवन की अवधारणाओं को त्यागा, दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया, लौकिक जीवन के प्रति आस्था पैदा की तथा मृत्यु के भय से अपने को मुक्त किया। आधुनिक जीवन ने तीन प्रकार की वस्तुओं के आधार पर अपना दृष्टिकोण परिवर्तित किया है। पहला है मृत्यु संबंधी विषयों को विशेषज्ञों पर छोड़ दिया। मृत्यु के संबंध में अव्यक्ति एक निंदनीय वस्तु बनी है। उसी प्रकार जिस प्रकार नग्नता संबंधी कोई भी विचार समाज में तथा विशेष रूप से बच्चों के सामने निंदनीय है, इसी तरह मृत्यु अथवा मृतक को शीघ्र से शीघ्र विस्थापित करने का प्राविधान बनाया गया। मरघट को ऐसे स्थान पर निर्मित करने की व्यवस्था हुई जो जनसाधारण की पहुंच के बाहर हो और अंतिम संस्कार को विशेषज्ञों के हवाले कर दिया गया। पृष्ठ संख्या 464। दूसरा है मृत्यु का जो भयावह स्वरूप दिखाया गया था, जहां मृत्यु को काले कपड़ों में कंकाल के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जो हमारे दरवाजे पर एक बार दस्तक देती थी तथा जिसके आगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था, इस अवधारणा का भी हनन हुआ है। मृत्यु अब ऐसी चीज नहीं है जो मात्र एक बार आती है। वह हमारे दैनिक जीवन में रोग और व्याधियों के रूप में प्रवेश करती रहती है, जैसे फास्ट फूड के दुष्परिणाम स्वरूप कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन खाने से, बिना कंडोम के सेक्स करने से, सिगरेट पीने से, गलीचे के कारण श्वास के रोग से तथा अनेक ऐसे जीवाणुओं से जिन्हें हम देख सकते हैं अथवा नहीं देख सकते। अधिक व्यायाम करने से या कम व्यायाम करने से, अधिक खाने या कम खाने से आदि। इस प्रकार इन उपयुक्त चीज़ों के कारण जब मृत्यु हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तब हम इसका समाधान करने में सक्षम हैं अथवा हमें नित्य नए अन्वेषणों से नवीन विपदाओं से संघर्ष करने हेतु सक्षम बनने में सफलता मिली है। तीसरा है अपने किसी निकटस्थ की मृत्यु की घटना निजी बनकर रह गई है। मृत्यु एक दैनिक जीवन की घटना हो गई है, जहां हमें किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं रह गई है। यह उसी प्रकार की घटना रह गई है जैसा कि हम साधारणतया टीवी तथा वीडियो के माध्यम से चलचित्र में देखते हैं। मृत्यु का खेल वैसा ही हो गया है जैसा लोग आमोद प्रमोद के लिए खतरनाक खेल खेलते हैं। मृत्यु का खेल कला के लिए कला के रूप में बनकर रह गया है। जिस प्रकार नग्न शरीरों को खुले में देखने से किसी प्रकार की कामुकता नहीं उत्पन्न होती, जो साधारणतया एकांत में नग्न शरीर के साथ उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मच्छर मक्खी की तरह मरते हुए लोग किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करते। मृत्यु जो कभी धर्म के लिए अत्यावश्यक घटना के रूप में देखी जाती थी, वह अब एक साधारण घटना के रूप में रह गई है। इसे अब एक कथानक के अंत के रूप में देखा जाता है। कथानक में रुचि तभी तक रहती है जब तक कि कथा चलती रहती है, जब तक उसमें आश्चर्य और खतरा रुचि न उत्पन्न करते रहें। एक बार कथानक का अंत हो गया तो उसमें किसी की रुचि नहीं रह जाती और जो धार्मिक विशेषज्ञ मृत्यु के बाद की घटनाओं को अपने हाथ में लेना चाहते हैं वह व्यक्तियों में कोई आस्था उत्पन्न नहीं कर सकते जो चलते हुए कथानक के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आधुनिक पुरुष तथा स्त्रियों में ऐसे ही कथानकों में उत्सुकता है जहाँ जीवन चलता रहे न कि मृत्यु द्वारा किए गए पटाक्षेप में। अब अगला शीर्षक है बिंदु पांचवा, अनिश्चितता, तत्वशास्त्र विहीनता या अनसर्टेनिटी एवं नॉन ऑन्टोलॉजिकल। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन के पूर्व स्त्री और पुरुष किसी प्रकार की निश्चितता में नहीं जीते थे। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की संभावना नहीं के बराबर थी और जीवन से मृत्यु तक बंधी हुई लकीर पर जीवन चलता था। मात्र मृत्यु ही ऐसी घटना थी जो निश्चित थी और इसीलिए यह तत्वशास्त्रियों की विषय वस्तु बन गई थी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने मृत्यु संबंधी अनेक कारणों की खोज कर ली है। अब मृत्यु मात्र एक अंधविश्वास तथा भाग्य पर आधारित नहीं रह गई है और पूर्व की भांति ऐसी घटना नहीं है जिसका पूर्वानुमान किया जा सके। यह एक प्राकृतिक घटना है जो रहस्यपूर्ण नहीं रह गई है तथा तत्वशास्त्रियों के लिए अब खोज का विषय नहीं रह गई है। आधुनिक युग में मृत्यु के पूर्व जीवन में व्याप्त अनिश्चितताओं के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है न कि मृत्यु संबंधी अनिश्चितता। मृत्यु के पूर्व घटित अनिश्चितताओं में तत्वशास्त्रियों का कोई स्थान नहीं है। अब भाग्य के उतार चढ़ाव से उत्पन्न तथा हमारी घटती बढ़ती अपेक्षाओं से संबंधित अनिश्चितताओं के प्रति अधिक जागरूकता है तथा पर्यावरण जनित मौसम, पृथ्वी के तापक्रम का बढ़ना ऐसे विषय जो मानवीय कारणों से जनित हैं न कि दैवी शक्तियों के प्रभाव के कारण हैं। आर्नोल्ड गेहलेन 1957 ने अपनी पुस्तक मैन इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी में कहा था कि अब व्यक्तिगत मूल्य तिरोहित हो रहे हैं और ऐसा इसलिए कि व्यक्ति के लिए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण को बुद्धि से समझ पाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे विश्व में जहाँ पर मूल्यों का तेजी से परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर ऐसी अवधारणाएं जो अपरिवर्तनीय हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज के मनुष्य को मार्गदर्शक विशेषज्ञों की आवश्यकता है किंतु वह विशेषज्ञ ऐसा होना चाहिए जो उसके कष्टों के निवारण हेतु सक्षम हो। अब तत्वशास्त्रियों द्वारा अव्यक्त असुरक्षा का कोई स्थान नहीं है। अब अनिद्रा की बीमारी इसलिए नहीं होती कि हम स्वर्ग और नरक में मृत्यु के बाद जाएंगे, वरन मृत्यु के पूर्व घटित अवसादों के कारण हो रही है। उत्तर आधुनिक पुरुष और स्त्री भी ऐसे पारस पत्थर को पाना चाहते हैं जो उन्हें परिवर्तित करे, आत्मनिष्ठा उत्पन्न कर सके। अब इस प्रकार के विशेषज्ञ, सलाहकार, लेखक, विश्वास चिकित्सा या फेथ हीलर्स और पुस्तकें जो आत्मविश्वास जगाती हैं उनकी मांग बढ़ रही है। अब व्यक्ति ऐसे विशेषज्ञों का चुनाव करता है जिससे उसे मार्गदर्शन मिल सके तथा ऐसी दृष्टि मिल सके जहाँ वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है तथा चुनाव की प्रक्रिया में त्रुटि आने के कारण अनिश्चितता के मार्ग से गुजरना पड़ता है। उत्तर आधुनिक जीवन शैली में जो अनिश्चितता है वह विशेषज्ञों द्वारा पूरी की जा रही है। वे या विशेषज्ञ तकनीकी का उपयोग करते हैं जिससे संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। आज के जीवन में ऐसे अनुभवी विशेषज्ञों की मांग बढ़ती जा रही है जो मनुष्य की अनिश्चितता को कम कर सके। आज का मनुष्य ऐसा उपदेशक नहीं चाहता जो उसकी कमजोरियों को बताए या मनुष्य के संसाधनों की कमी या इनसफिशियंसी बताए। आज के मनुष्य को इस बात का आश्वासन चाहिए कि वह किसी काम को कर सकता है या उसे इसकी आवश्यकता है, कि कोई यह खुलासा करे कि कोई कार्य कैसे किया जा सकता है। बाउमन एक उपभोक्तावादी होने के नाते यह तर्क देते हैं कि उत्तर आधुनिक काल में समाज उपभोक्तावादी समाज है। इस युग में व्यक्ति सामाजिक रूप से सुख की खोज करता है। पृष्ठ संख्या 466। इस काल में व्यक्ति इंद्रिय सुख के भोग में जीवन की सफलता ढूंढता है। उत्तर आधुनिक काल में मनुष्य को ऐसे व्यक्ति या विशेषज्ञ की तलाश है जो मनुष्य को सांसारिक सुखों को भोगने में अधिक से अधिक सफल बना सके तथा मनुष्य जीवन के रहते सुख का पूर्ण उपभोग कर सके। अब अगला शीर्षक है 6वां, जगत में रहकर सुख या आनंद की प्राप्ति, दिस वर्ल्डली ट्रांसेंडेंस। अब्राहम मसलो ने प्रतिपादित किया था कि साधु संतों को जिस अतींद्रिय जगत की अनुभूति या एक्स्टसी हुई थी तथा उनसे जुड़े हुए विश्वास पात्र व्यक्तियों को भी अनुभूति प्राप्त हुई थी, वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं मानवीय शिखर अनुभवों या पीक एक्सपीरियंसेज के आधार पर परिभाषित की जा सकती है। इस प्रकार के शिखर अनुभव अथवा आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व्यक्तियों के समूह को प्रेषित की जा सकती हैं। प्रश्न यह होता है कि क्या इस प्रकार के अनुभव उत्तर आधुनिक युग में धार्मिक कहे जा सकते हैं। अतींद्रिय अनुभव आनंद तो किसी समय साधु संतों, रहस्यवादियों, भिक्षुओं, दरवेशों और अभिजात या एरिस्टोक्रेट वर्ग की धरोहर थी और जो जादुई ढंग से प्राप्त हो जाती थी, वह आधुनिक युग के लोगों को बिना तपस्या तथा उत्सर्ग के ही प्राप्त होना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। किंतु उत्तर आधुनिक संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होने का प्राविधान कर दिया है। उत्तर आधुनिक संस्कृति ने यह व्यवस्था कर दी है कि मनुष्य के शरीर एवं मनोविज्ञान में अपार क्षमता है जिससे विकसित करके उस अनुभव को प्राप्त किया जा सकता जिसे तथाकथित धर्म ने वंचित कर दिया था। तथाकथित धर्म ने मनुष्य को कमजोर बना दिया था और वे संत अपने अतींद्रिय जगत के अनुभवों को दूसरे व्यक्तियों को संप्रेषित करने में असफल रहे। आधुनिक युग में जो भी पारंपरिक संस्थाएं जो अतींद्रिय जगत के अनुभवों को मानव मात्र को संप्रेषित करना चाहती हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनके अनुभव सभी व्यक्तियों के लिए ग्राह्य हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति इसे प्राप्त करने में सक्षम है तो दोष उसका है कि वह उस प्रक्रिया को सही प्रकार से नहीं अपना रहा है। सही प्रक्रिया अपनाने पर दूसरों को भी अनुभव संप्रेषित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर आधुनिक संस्कृति में जो लोग शिखर अनुभवों के दौर से गुजरना चाहते हैं, उन्हें इस भ्रांति को हटाना होगा कि ऐसे अनुभव शारीरिक कष्ट, भोग का त्याग, सांसारिक आकर्षण का त्याग करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें संसार में रहते हुए उपभोक्तावादी समाज की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी कार्यशैली में रूपांतरण करके कलात्मकता लाकर इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए उस अनुभव को प्राप्त करना होगा। उपभोक्तावादी समाज में बाजार में जिन वस्तुओं को बेचा जाता है, उनमें इंद्रिय सुख में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है, चाहे वह खाने पीने की वस्तुएं हों अथवा शीतल पेय अथवा गाड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, चश्मे, पर्यटन संबंधी सेवाएं, सभी इस बात पर जोर देती है कि उनके उत्पाद अथवा सेवा पहले की अपेक्षा अधिक इंद्रिय सुख प्रदान करेंगे, जिसका स्वाद हमें पहले नहीं मिला था। पृष्ठ संख्या 467। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ऐन्द्रिक सुख की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के मार्ग पर चलने से एक विस्फोट हो सकता है, जहां उस अतिंद्रिय की अनुभूति हो। इसके लिए स्वस्थ शरीर, सुंदर एवं प्रशिक्षित मन, जहां ऐन्द्रिक सुख की संवेदनशीलता चरम सीमा पर पहुंच सके, जो अंततो गत्वा अभूतपूर्व सौंदर्य प्रकाशित कर सकेगा। उत्तर आधुनिक युग में यह कार्य ऐसे समूहों द्वारा कराया जा रहा है जो व्यक्ति को व्यायाम करना, ध्यान सिखाते हैं और मनोविश्लेषण द्वारा दबी हुई इच्छाओं, वासनाओं का निकास के द्वारा अतिंद्रिय रहस्यवादी अनुभवों की शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समूह यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि अनुभवों को प्राप्त करना एक तकनीकी समस्या है, और यदि एक उचित तकनीकी दिया जा सके तो अनुभवों की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। उत्तर आधुनिक संस्कृति में जो समूह जैसे कि योग शिक्षण संस्थान, रेकी तथा मनोविज्ञान चिकित्सा आदि कार्य कर रहे हैं, अर्थात प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनमें तथा संस्थागत चर्च एवं अन्य संस्थाओं में यदि कोई समानता है तो वह एक संस्थागत पद्धति की है। आधुनिक समूह धार्मिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं से हटकर एक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। जिस प्रकार उपभोक्तावादी समाज में भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार इन संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं की तलाश की जाती है और उनके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण से उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं, अर्थात उनके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण से दिव्य अनुभव ले सकते हैं। अब अगला शीर्षक है बिंदु 7वां, भविष्य उन्मुखी धर्म या भविष्य की ओर लौटो। बैक इनटू द फ्यूचर। उत्तर आधुनिक धर्म उत्तर आधुनिक जीवन शैली में व्याप्त अंतर विरोधों का परिणाम है, जहां मनुष्य अपनी अपूर्णता तथा स्वप्निल जगत को ध्यान में रखते हुए भाग्य को अपने अधीन करना चाहता है। यह प्रतीक या प्रारूप या फॉर्म अंग्रेजी में फंडामेंटलिज्म के नाम से व्यक्त किया गया है। फंडामेंटलिज्म विश्व के अनेक भागों में, जहां कभी ईसाइयत इस्लाम तथा यहूदी धर्मों का साम्राज्य था, अब तीव्र गति से फैलता जा रहा है। फंडामेंटलिज्म पूर्णतया समकालीन उत्तर आधुनिक तथ्य या फिनोमिना है। विज्ञान एवं तकनीकी तथा आधुनिकतावाद से यह जुड़ा है और इसकी मान्यता है कि हम सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए अतींद्रिय सुख को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह सांसारिक सुखों को पूरी तरह से भोगते हुए बिना किसी दुष्परिणाम का मूल्य चुकाए हुए आधुनिक आकर्षणों का उपभोग कर सकता है। गिलेस केपेल ने अपनी पुस्तक द रिवेंज ऑफ गॉड, जो कि 1994 में कैम्ब्रिज के पॉलिटी प्रेस से प्रकाशित है, में जो कथन दे रहे हैं उससे असहमत होना बहुत कठिन है। पृष्ठ संख्या 468। केपेल कहते हैं कि आज के युग के शिशु अवांछनीय संतानें संभवतः जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, कंप्यूटरीकरण से उत्पन्न दोगले और उनकी चित्कार, जो अपने माँ बाप को खोजना चाहते हैं और अपना असली चेहरा ढूंढना चाहते हैं, उत्तर आधुनिक धार्मिक आंदोलन की देन है, जो सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं तथा इसका निदान वे स्वयं करना चाहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना होगा कि आधुनिक समाज की रुग्णता मजदूर क्रांति से भिन्न है। मजदूर क्रांति शोषण पर आधारित थी। आज का गरीब वह है जो उपभोक्तावादी समाज द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करने में असमर्थ है। उसकी निराशा यह है कि वह नवीनतम वस्तुओं को क्रय करने में भी असमर्थ है। मानवीय अपूर्णता उत्तर आधुनिक उपभोक्ता का वह कटु अनुभव है, जहां जीवन का विषाद ऐसे चुनाव पर आधारित है जहां वह क्रय की हुई उन वस्तुओं का सुखानुभव नहीं प्राप्त कर सकता जो दूसरे कर सकते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है और न हो सकता है। वह स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ है। उसे मार्गदर्शक चाहिए जो उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए। यह अपूर्णता का संदेश है। परंतु प्राक आधुनिक धर्म प्री मॉडर्न रिलीजन की भांति यह मानव मात्र की कमजोरी के कारण नहीं है, वरन व्यक्ति विशेष की इस कमी के कारण है, जो वह अपने समुदाय में दूसरे मनुष्यों से तुलना करके कमी अनुभव करता है। इस प्रकार फंडामेंटलिज्म उत्तर आधुनिक युग में मनुष्य की अंतर्निहित दुश्चिंताओं आकांक्षाओं को खुले आकाश में लाने का प्रयास करता है, जो विश्वजनीन है। यह उस बात को खुले में स्वीकृत है जिसे मनुष्य ने सदैव से अनुभव किया है, परंतु उसे अभिव्यक्त करने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। आधुनिक युग में फंडामेंटलिज्म सलाहकारों, मार्गदर्शकों, विशेषज्ञों की सहायता से उत्तर आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धार्मिक फंडामेंटलिज्म उत्तर आधुनिक युग की वैध संतान है, जो उसके सुख दुख से निकली है और जिसके उत्तराधिकारी चिंता एवं उपलब्धि दोनों ही समान रूप से प्राप्त कर सकेंगे। जायमंट बाउमन अपने इसी सिद्धांत को, जिसे वह फंडामेंटलिज्म का नाम देते हैं, इसी को उत्तर आधुनिक युग का धार्मिक फंडामेंटलिज्म नामकरण करते हैं। यह धार्मिक फंडामेंटलिज्म सलाहकारों, विशेषज्ञों तथा मार्गदर्शकों पर निर्भर करता है। इसके लिए पुरोहित, पंडित तथा पादरी की आवश्यकता नहीं है। यह उत्तर आधुनिक संस्कृति का धर्म है। यह उपभोक्तावादी समाज और संस्कृति पर आधारित है। फंडामेंटलिज्म मेयरली ब्रिंग्स टू इट्स रेडिकल कंक्लूजन द कल्ट ऑफ स्पेशलिस्ट काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड द प्री ऑक्यूपेशन विथ एक्सपर्ट असिस्टेड सेल्फ ड्रिल बोथ ऑफ विच द पोस्ट मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर डेली प्रमोट्स। इन दिस रेस्पेक्ट फंडामेंटलिज्म इन द सुप्रीम एम्बॉडीमेंट ऑफ ए टेंडेंसी एडेड एंड एबिटेड बाय द होल थ्रस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न कल्चर। पृष्ठ संख्या 469। उपर्युक्त कथनों तथा तर्कों के आधार पर लेखक धार्मिक फंडामेंटलिज्म को उत्तर आधुनिकता की वैध संतान मानते हैं। लेखक के शब्दों में, वन में कंक्लूड दैट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज ए लिगिटिमेट चाइल्ड ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी बॉर्न ऑफ इट्स जॉयज एंड टॉर्मेंट्स एंड हियर टू इट्स अचीवमेंट एंड वरीज अलाइक। लेखक अपने इस धार्मिक फंडामेंटलिज्म की कुछ विशेषताओं तथा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहता है कि फंडामेंटलिज्म चुनाव या च्वाइस की चिंताओं से मुक्त करने का आश्वासन देता है। फंडामेंटलिज्म सर्वशक्तिमान अधिकारी या अथॉरिटी के रूप में है और यह अन्य सभी अधिकारियों को समाप्त कर देता है। इससे पता चलता है कि जीवन के निर्णयों को लेने में हमें कहाँ से सहायता मिलती है और कहाँ से खतरा हो सकता है। यदि उपभोक्तावादी समाज मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता देता है और चुनाव संबंधी परिस्थितियों की अनिश्चितता पर आधारित है, तो फंडामेंटलिज्म इस अनिश्चितता को सुरक्षा में बदलने के लिए साधन प्रदान करता है। धर्म एक व्यक्तिगत विषय नहीं है और ऐसी चीज नहीं है जिसे एकांत में करना है। यह जीवन के हर पहलुओं को अंगीकार कर व्यक्ति के कंधों पर दबाव डालता है। उत्तर आधुनिक संस्कृति का मानना है कि उपभोक्तावादी प्रचार अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक बोझ है जिसे वह स्वतः वहन करने में असमर्थ है। धार्मिक फंडामेंटलिज्म के विषय में केपेल 1994 का मत है कि इसके पास अभूतपूर्व क्षमता है। इसमें समाज की कुरीतियों को प्रकट करने की क्षमता है। यह बात बहुत सच है। धार्मिक फंडामेंटलिज्म प्रश्नों के जो भी उत्तर प्रदान करता है, उनमें प्रश्नों की वास्तविकता रहती है। समस्या यह नहीं है कि हम प्रश्नों की गंभीरता को कैसे खारिज कर दें, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि हमारे उत्तर साम्यवादी प्राचीन परंपरा से मुक्त हो। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटलिज्म प्रश्नों का तिरस्कार नहीं करता, उन्हें धर्म तथा धर्म की कोटि में नहीं रखता। इसमें सर्वस्वीकार की भावना निहित है और उनके उत्तर भले ही संतोषपूर्ण न हो, परंतु इस प्राचीन चर्चवादी व्यवस्था से मुक्त है। अर्थात प्राचीन चर्चवादी व्यवस्था लौकिक जीवन के प्रश्नों को स्वीकार नहीं करती। उसका आग्रह अतींद्रिय जगत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने में है, परंतु फंडामेंटलिज्म लौकिक जगत के प्रश्नों के हल ढूंढने में रुचि रखता है। अब अगला शीर्षक है समीक्षा। इसमें पहला बिंदु है धर्म की परिभाषा। उत्तर आधुनिक युग के विचारक धर्म की परिभाषा के विषय में कहते हैं कि धर्म की परिभाषा नहीं की जा सकती, किंतु पूरब के मनीषी धर्म की परिभाषा यह कहकर देते हैं कि धर्म वह है जो हम सबको धारण करता है। अर्थात धर्म वह तत्व है जो समस्त सृष्टि में घास के तिनके से लेकर आकाश में अनेक नक्षत्र ग्रह सितारे में समाया हुआ है। इसी व्याप्त तत्व की अनुभूति धर्म है। उत्तर आधुनिक धर्म के विचारक कहते हैं धर्म तीन भागों में बटा है। पहला है आधुनिकता के पूर्व का धर्म, दूसरा है आधुनिक धर्म, तीसरा है उत्तर आधुनिक धर्म। हमारे यहाँ ऐसा विभाजन नहीं है। धर्म तो एक ही है जो धारण करे। धर्म तो शाश्वत है, धर्म सनातन है। अभिव्यक्ति में अंतर हो सकता है, किंतु स्वरूप में नहीं। धर्म अनुभव की चीज है। पृष्ठ संख्या 470। अब बिंदु दूसरा है धर्म का विषय। धर्म का विषय आत्मा है। धर्म आत्मा के ऊपर निर्भर है। मनुष्य की कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं जो शरीर से संबंधित हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इनकी पूर्ति के बाद मनुष्य धर्म, कला, संगीत की ओर जाता है। मन काव्य, कला, सौंदर्य तक सीमित है, किंतु धर्म इनके ऊपर आत्मा से संबंधित है। उत्तर आधुनिक धर्म इसके विषय में कुछ नहीं कहता, इसकी पहुंच वहां तक नहीं है। उत्तर आधुनिक धर्म के विचारक भौतिक शरीर के स्तर तक की बात करते हैं। अब बिंदु तीसरा है धर्म के मूल तत्व की परिभाषा नहीं हो सकती, वह अपरिभाष्य है। उत्तर आधुनिक विचारक धर्म की परिभाषा में लगे रहते हैं। उनके लिए धर्म की परिभाषा नाशवान या पेरिसेबल है, किंतु भारतीय दृष्टि से धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती, उसकी तो अनुभूति की जा सकती है। धर्म मूल तत्व है, मूल तत्व की परिभाषा नहीं की जा सकती। अतः धर्म अपरिभाष्य है, वह तर्क से परे है। जिसकी परिभाषा होती है वह तर्क का विषय होता है। जो तर्क से परे है उसकी परिभाषा कैसे की जा सकती है। बिंदु चौथा है धर्म के आलोचक धर्म की आलोचना इसलिए करते हैं कि वे ईश्वर को व्यक्तिवादी अर्थ में लेते हैं, उसमें अपूर्णता ढूंढते हैं। यदि ईश्वर को क्रिया के अर्थ में लिया जाए तो ऐसी आलोचना संभव नहीं है। ईश्वर जो प्रवाहमान है वह मनुष्यत्व तथा पशुत्व से अलग है। व्यक्ति में तो अपूर्णता है, परंतु पूर्ण या ब्रह्म में अपूर्णता नहीं है। धर्म में आध्यात्मिक विकास होता है। यह डार्विन के शरीर विकास से बहुत भिन्न है। साधना से मनुष्य का धार्मिक विकास होता है। मनुष्य का अधर्म से धर्म में रूपांतरण होता है। धर्म के आलोचक इस रूपांतरण के विषय में नहीं जानते। मनुष्य में संभावना है कि वह पशु जगत से उठकर विचार जगत, भाव जगत की ओर जाता है। धर्म भाव जगत से संबंधित है, विकास विचार जगत से संबंधित है, किंतु धर्म इससे ऊपर भाव तथा अध्यात्म तक पहुंचकर पूर्णता को प्राप्त होता है। बिंदु पांचवा है मानवतावाद। उत्तर आधुनिक धर्म में मानवतावाद को इसलिए महत्व दिया गया कि मनुष्य ईश्वर के हाथों में पड़कर विवश न हो जाए। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि वह अपना सभी कार्य बिना ईश्वर के पूरा कर सकता है। इस तरह मानवतावाद को ऐसे धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध भी ईश्वर विहीनता की बात करते हैं, किंतु बौद्ध धर्म फिर भी धर्म की श्रेणी में आता है। बौद्ध धर्म में ईश्वरीय गुणों को स्वीकृति मिली है। मानवतावाद में ईश्वरीय गुण जैसी किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें मनुष्य ही सर्वोपरि सत्ता है। बिंदु छठवां है उत्तर आधुनिक धर्म ने मृत्यु और न्याय दिवस के सिद्धांत को ठुकरा दिया है, किंतु मृत्यु एक वास्तविक तथा अप्रिय तथ्य है जिसको इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। मृत्यु को एक परिवर्तन की संज्ञा देनी चाहिए। मृत्यु को अनंत जीवन का एक पड़ाव माना जाता है। मनुष्य आध्यात्मिक और भविष्य जीवन में विश्वास रखने वाला प्राणी है। मोक्ष भी एक चिरंतन शांति का एक रूप है। इसको मुनियों, संतों तथा रहस्यवादियों ने अपने अकाट्य अनुभवों से सत्य पाया है। संसार में अनेक पुनर्जन्म की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे उत्तर आधुनिक धर्म की यह धारणा कि मृत्यु विनाश है गलत सिद्ध हो जाती है। पुनर्जन्म की कथाओं से क्यों न उत्तर आधुनिक धर्म के सिद्धांत का खंडन माना जाए। उत्तर आधुनिक धर्म के व्याख्याता यह अलौकिक जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और इस जगत की सुविधा सौख्य तथा उपभोग की वस्तुओं का आनंद लेना महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका यह विचार धर्मों के संतों तथा अवतार कोट के महापुरुषों के जीवन से खंडित हो जाता है। पृष्ठ संख्या 471। अब बिंदु सातवां है निश्चितता अनिश्चितता का नियम। उत्तर आधुनिक धर्म मानता है कि पहले सब अनिश्चित था, केवल मृत्यु ही निश्चित मानते हैं, किंतु अब कई साधनों से अनिश्चितता में कमी आ गई है। किंतु देखने में आता है कि यह जीवन न पूर्ण रूप से निश्चितता के सिद्धांत से चल रहा है और न अनिश्चितता के सिद्धांत से चलता है। कुछ बातें तर्कातीत हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती और कुछ तर्कातीत नहीं है। यह संसार नियतिवाद तथा अनियतवाद का मेल है, अर्थात कुछ बातें पहले से निर्धारित हैं, नियत हैं और कुछ नियत नहीं हैं। जैसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था कि प्रकृति के विषयों का यदि हम अन्वेषण कर लें तो पूरे ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह पढ़ सकते हैं, हम भविष्य की पूर्व घोषणा कर सकते हैं। यह भाग्यवादी विचारधारा का पोषक है, जहां व्यक्ति की अवधारणा है कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जैसे नियतिवाद, न्यूटन निश्चितता का पोषक थे, आधुनिकता भी इसका पोषक है। उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी के आइंस्टीन तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित विचारधारा अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी पर आधारित है। हमारे यहाँ गीता दोनों का, जैसे निश्चित और अनिश्चित का समन्वय करती है। गीता कहती है कार्य करना हाथ में है किंतु फल की प्राप्ति हाथ में नहीं है। गीता शाश्वत नियम की भी बात करती है। अब बिंदु आठवां है जगत में रहकर सुख या आनंद की प्राप्ति। उत्तर आधुनिक धर्म के पोषक यह प्रतिपादित करते हैं कि जो अतींद्रिय अनुभव का आनंद साधु संतों को हुई थी, वही अनुभव और आनंदा अनुभूति इसी जगत में रहकर सामान्य व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य में अपार क्षमता है। उत्तर आधुनिक युग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मनुष्य उस अपनी क्षमता का विकास करके उस अनुभव को प्राप्त कर सकता है, उस सच्चे अनुभव को जिसे मसलो शिखर अनुभव या पीक एक्सपीरियंस कहते हैं। आज के युग का मनुष्य उपयोग की बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करके प्राप्त कर सकता है, अर्थात आनंद की अनुभूति को मनुष्य उपभोक्ता समाज में सरलता से प्राप्त कर सकता है। यहाँ उत्तर आधुनिक धर्म के उपभोक्ता समाज की कटु आलोचना की जा सकती है। प्रथम यह कि मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं तो अनंत हैं और इच्छाएं दुष्पुर हैं, अर्थात कभी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। यदि ऐसी बात है तो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी वासनाओं और इच्छाओं को आगे बढ़ाती रहती है। इससे मनुष्य इच्छाओं के जंगल में फंसता जा रहा है। इस अनंत इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य में विक्षिप्तता उत्पन्न हो रही है। प्राचीन धर्मों में चर्च, मंदिर, मस्जिद में संतोष मिल नहीं रहा है, फलतः अब संस्कृति उत्पन्न हो रही है। उत्तर आधुनिक धर्म के अनुपालन और अनुकरण से जो दुष्परिणाम मिल रहा है वह सबके सामने है। इससे बचने का उपाय किसी के पास नहीं है, यदि है तो संयम तथा संतोष ही उपाय है। अब बिंदु नौवां है उत्तर आधुनिक धर्म में उपभोक्तावाद मुख्य धर्म हो गया है, किंतु हम यह जानते हैं कि उपभोक्तावाद को धर्म की संज्ञा दी नहीं जा सकती। धर्म तो आंतरिक होता है, बाह्य जगत में उपभोक्तावाद है और आंतरिक जगत में धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो बाहर की वस्तुएं मनुष्य को कितना आंतरिक सुख या शिखर अनुभव की अनुभूति करा सकती हैं। हमारे देश में ऐसे गृहस्थ वैरागी रहे हैं, ऐसे ज्ञानी राजा रहे हैं जिन्हें राज्य का सुख वैभव प्राप्त हुआ है, किंतु संयम तथा संतोष और वैराग्य के बल पर ही शिखर अनुभवों की प्राप्ति की है। उन्हें वस्तु के उपभोग से नहीं, ज्ञान और संयम से उच्च अनुभव की प्राप्ति हुई है। पृष्ठ संख्या 472। ज्ञानी राजा जनक का तथा उपनिषदों के ऋषियों का उदाहरण पर्याप्त है। यह उदाहरण सार्वकालिक हो सकता है। यह नहीं कह सकते कि उत्तर आधुनिक युग के लिए संयम या तपस्या या संतोष का मानदंड बदल जाएगा। अब बिंदु दसवां है, उत्तर आधुनिक धर्म फंडामेंटलिज्म को धर्म के रूप में स्वीकार करता है, जिसमें मार्गदर्शक, उपयोग की सामग्री तथा सुविधाओं का महत्व है। इन्हीं से उत्तर आधुनिक धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि मनुष्य में जब बाहरी दुनिया की वस्तुओं से व्यामोह हो जाए, उसको यह ज्ञात हो जाए कि यह सुख का संसार मृग मरीचिका के समान है, तब धर्म की ओर जा सकता है। मार्गदर्शक नहीं, गुरु की आवश्यकता है, जो धर्म जीवन में प्रवेश कराता है। मनुष्य में धर्म के प्रति एक मैग्नेटिक सेंटर होता है, जो मनुष्य को खींचता है। इसी को भारतीय मुनियों और साधकों ने कहा है कि मनुष्य में धर्म की पिपासा होती है, तभी मनुष्य धर्म की ओर गमन करता है। वह अपनी धार्मिक पिपासा के लिए भौतिक जगत को छोड़ता है और आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। वह यह लौकिक जीवन में ही रहकर धर्म जीवन जीता है। योगी शरीर में 7 चक्रों को पाए जाने की चर्चा करते हैं, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा तथा सहस्रार। इनमें प्रथम 3 चक्र पशु और मनुष्य में समान हैं, चौथे और पांचवें में मनुष्य भाव रहता है और छठे तथा सातवें में देवत्व भाव रहता है। उत्तर आधुनिक धर्म के लोग ऊपर के 3 चक्रों तक रहते हैं। खाना पीना, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक, धर्म तो इसके ऊपर है। धर्म का क्षेत्र सर्वोपरि है। यहाँ उत्तर आधुनिक धर्म का प्रवेश नहीं है। भारतीय योग साधना तो यही सिद्ध करती है। अध्याय 31 समाप्त। इसी के साथ डॉक्टर हृदय नारायण मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक धर्म दर्शन परिचय समाप्त। धन्यवाद।